कोरिया के एक लेखक ने अपनी जीवन कहानी कभी लिखी थी। उसमें उसने लिखा कि जब से मुझे याद है मैंने अपनी मां को एक आंख से अंधा ही देखा, और क्योंकि मेरी मां को एक आंख नहीं थी मुझे अच्छा नहीं लगता था। और मुझे याद है कि एक दिन वो मुझे स्कूल में मिलने आ गई और सभी मित्रों ने मेरी बहुत हंसी उड़ाई कि तुम्हारी मां की एक ही आंख है, तुम्हारी मां अंधी है, तुम्हारी मां अंधी है। और उसने लिखा कि तब से मुझे अपनी मां के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। मुझे नहीं अच्छा लगता था दूसरों के सामने ये कहना कि ये मेरी मां है, क्योंकि जैसे ही मैं कहता था सब लोग मेरे तरफ देखते और मेरी हंसी उड़ाते। मैंने मेरी मां को कई बार देखा, वो इसलिए रो रही है, परंतु मैंने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। और वो जब जब वहां आ जाती थी जहां पर मैं रहता था या दूसरे लोग एकत्र होते थे, मुझे अच्छा नहीं लगता था। और इसी घृणा की वजह से एक दिन फिर, मेरे पिता तो थे नहीं, एक ही मां थी, और फिर मैं पढ़ाई के लिए कहीं और गया। वहां पर बहुत लगन से पढ़ाई की, बहुत सारी डिग्रियां मिली। सोल यूनिवर्सिटी कोरिया की, वहां पर एडमिशन ली और एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। उसके बाद में मैंने कभी उसकी खबर लेने की कोशिश नहीं की, क्योंकि जब भी मैं उसको याद करता था मन में हेट्रिट और नफरत आ जाती थी। उसका वो कुरूप सा चेहरा मुझे अच्छा नहीं लगता था। और फिर मेरी शादी हो गई और फिर मुझे एक छोटी सी बच्ची हुई, और एक दिन अचानक एक बूढ़ी सी औरत द्वार पर आ गई। और जैसे ही उस बूढ़ी औरत को, जिसका एक आंख नहीं थी, मेरी छोटी सी बच्ची ने देखी उसको, तो वो डर गई और डर के मारे अंदर भाग गई, उसकी बेटी। और फिर जब ये वहां आया तो उसने ऐसा दिखाया जैसे मैं इसको जानता नहीं, कौन है तुम, जाओ यहां से, क्यों डराने आई हो मेरी बेटी को। और उसको लगता है शायद उसने तो पहचान लिया, पर लगता है शायद उसने नहीं पहचाना उस बूढ़ी मां ने। बहुत समय बीत जाता है, फिर एक दिन उसे खबर आती है कि वह जो गांव जहां उसने पढ़ाई की थी, जहां उसका घर था, वहां पर स्कूल यूनियन का प्रोग्राम हो रहा है। जिस स्कूल में वो पढ़ा था वहां पर गैदरिंग हो रहा है, सारे पुराने विद्यार्थी वहां आ रहे हैं बहुत समय पहले के। तो वो सोचता है मुझे वहां जाना चाहिए, देखूं तो क्या हो रहा है। और बहुत साल बीत चुके होते हैं, वो स्कूल गैदरिंग में जाता है और फिर उसे अपने घर की याद आती है जहां उसकी मां थी। तो वो देखता है उसकी मां ने सुबह ही शरीर छोड़ दिया है, और उसकी जो तकिया होती है उसके नीचे एक खत होता है, और जिस खत में ये लिखा होता है कि मुझे माफ करना, उस दिन मैं ही थी जो तुम्हारे घर में आई थी, और मुझे माफ करना जो मेरे वजह से तुम्हारे दोस्त तुम्हारी हंसी उड़ाते थे, पर मैं तुमको एक बात बताना चाहती हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है अब मेरा अंतिम समय आ गया है। बचपन में जब एक बार तुम खेल रहे थे तो तुम्हारी आंख में चोट लगी थी, तब मैंने ही क्या अपनी आंख तुम्हें दी थी। लेखक लिखता है कि मैं अब क्या करूं, कैसे पश्चाताप करूं, मां का जो व्यक्तित्व है बहुत ऊंचा है। एक है मां, दूसरा है मातृत्व, दो शब्द है। एक है मदर, दूसरा है मदरहुड। मां बनना बहुत आसान है, इस शरीर से शरीरों को जन्म देना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु मातृत्व पाना, मातृत्व का मां होने से भी कोई संबंध नहीं है। मातृत्व, मदरहुड बहुत ऊंची धारणा है, जहां पर पालना के संस्कार है, जहां प्यार का संस्कार है, जहां संवेदनशीलता का संस्कार है, वह मातृत्व है। जहां ये भाव है कि ये जो सारे हैं मेरे अपने हैं, कोई एक मेरा नहीं है, सब मेरे हैं, ये मातृत्व है। मां तो उसमें मोह हो सकता है, मोह विकार है, मोह विकार की श्रेणी में आता है। मातृत्व प्रेम है, प्रेम दिव्य गुणों की श्रेणी में आता है। एक मां है जिसका बेटा स्कूल से नहीं लौटा है, वो चिंतित है, परेशान है, क्यों अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, और वैसे ही उसी हाल में निकल पड़ती है रास्ते में स्कूल की तरफ भी, मेरे बेटे को किसी ने देखा, मेरे बेटे को क्या हुआ, किसी को पूछती है मेरा ऐसा बेटा इतनी उम्र का है, टाई लगाकर है, स्कूल के ये ड्रेस है, क्या तुमने देखा। और एक व्यक्ति उसको कहता है हां अभी अभी एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, इसी उम्र का है, ऐसे ही ड्रेस पहना था, ऐसा ही टाई था। वो और घबराती है, और घबरा के जाकर देखती है कि भीड़ लगी हुई है, सब भीड़ को अलग करती है और जाकर देखती है, और फिर मेरा नहीं है, थोड़ी चैन मिली, राहत। ये माँ है या मातृत्व है? ये केवल माँ है, माँ नहीं बनना है, मातृत्व तक की तरफ चलना है। माँ यदि हो भी तो उस माँ में मातृत्व हो, या फिर मातृत्व होने के लिए मां बनने की आवश्यकता नहीं है। एक ब्रह्मा कुमारी अर्थात मातृत्व का प्रतीक है। भगवान जब धरा पर आए तो ज्ञान का कलश भाइयों के पुरुषों के सिर पर नहीं रखा, रखा होता तो दंडे खाने पड़ते, ऐसा अजीबोगरीब ज्ञान। चुना किसको? माताओं को चुना, किसको? बहनों को, जहां पर सौंदर्य है, माधुर्य है, संवेदना है, सहनशीलता है। नारी अर्थात सहनशीलता का प्रतीक। वुमन थाय नेम इज स्ट्रेंथ, या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेणि संसिताम, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेणि संसिताम, या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेणि संसिताम, नमस्तस्से 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 नमः नमः। शास्त्रों ने गायन किया है, वो गार्गी और वो मैत्रेयी, वो माँ थी, वो अनुसया और वो सती माँ थी। तो भगवान जब धरा पर आते हैं तो ज्ञान का कलश माताओं के सिर पर रखा है। जिसे सब ने ठुकराया उसे बाप ने आकर क्या बना दिया? ठाकुर बना दिया। तो सभी माताएं, सभी बहनें, सभी कन्याएं, सभी कुमारियां अपने आप को उस मातृत्व तक ले चले। मां नहीं जगत माता, स्वयं को वह अन्नपूर्णा मां समझना है, वह देवी समझना है जिसे सर्व की पालना करनी है, वो पापनाशिनी, वो भक्त वत्सल, वो महिषासुर मर्दिनी, इस स्वरूप में स्थित होना है। तो भगवान जब धरा पर आते हैं तो कहते हैं वंदे मातरम। क्या हमने स्वयं को ऐसी योग्य माता बनाया है जिसको केवल एक बेटा नहीं परंतु सकल जगत मां कहे, जिसका प्यार एक से नहीं परंतु सबसे है, जो एक की पालना नहीं परंतु सबकी पालना करे, सकल जगत की पालना करने वाली जो है वो मां है, जिसमें संपूर्ण सहनशीलता है वो मां है, जिसमें मातृत्व है वो मां है वास्तविक। इस यज्ञ के इतिहास में देखो तो कितनी यातनाएं सहन की है माताओं ने। एक एक माता की कहानी ऐसी कहानी है कि बहुत सहन किया, बहुत सहन किया। क्या क्या उन पर प्रयोग हुए, जादू टोने, किस किस को तांत्रिक मांत्रिक को बुलाया गया, कितनी शारीरिक पीड़ाएं सहन करनी पड़ी, पर सब कुछ सहन किया। इसके लिए भगवान उनको सलाम करता है, भगवान उनकी वंदना करता है। यदि भगवान मेरी ऐसी वंदना कर रहा है तो क्या मैं उसके योग्य हूं? या अपने ही दुख दर्द में, कल अभी अभी मुरली में कहा था, शादी करते हैं फिर मोह उत्पन्न होता है, पहले पति में, फिर घर वालों में, फिर और मित्र संबंधियों में, और फंस जाते हैं। ये मातृत्व नहीं है, मातृत्व बहुत ऊंची धारणा है। जिसमें लगे ये सारे मेरे अपने हैं। अपने मोह को सार्वजनिक कर दो। क्या करना है मोह का? सार्वजनिक बना दो। सार्वजनिक मोह अर्थात प्रेम, संकुचित मोह अर्थात विकार। महाराष्ट्र में माताएं कहती है कि साईं बाबा जन्म लेना चाहिए, साईं बाबा के भक्त बहुत है उधर, साईं बाबा आना चाहिए परंतु बाजू वाले के घर में, हमारे घर में नहीं, क्योंकि इधर आया तो सन्यासी जाकर बनेगा, उसकी हम पूजा कर सकते परंतु बाजू के घर में, बाजू की जो माता है उसके घर में आए, हमारे घर से कोई नहीं, हमारे घर का सब ठीक हो, शादी विधि हो जाए, सबकी हो जाए, सहयोगी हम हैं, पर हमारी कुमारी को कोई अच्छा ब्रह्मा कुमार मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाए, ऐसी भी सोचने वाली माताएं हैं। एक माता ने अपने बेटे को ज्ञान में लाया और वो कुमार एकदम पक्का कुमार बन गया। फिर मां ने कहा मुझे बहू चाहिए। अब उसी मां ने जिसने उसको ज्ञान दिया और बाबा का बनाया, उसने कहा नहीं, उसने कहा हां तुम्हें करना ही पड़ेगा। और फिर उसकी शादी कराई, फिर बहू आ गई, पर बहू भी ऐसी आई खतरनाक, तेज तर्राक, रोज झड़ाई झगड़े, रोज झगड़े, रोज झगड़े। बेटे ने कहा देखा तुमने ही बोला था शादी करो। मां ने कहा मैंने तो कहा पता कर, की तो तुमने। तो भगवान जिसको नमन कर रहा है, वंदन कर रहा है, सलाम कर रहा है, वो माता कैसी होनी चाहिए, उसकी कुछ बातें हम आज देखेंगे। कल की अव्यक्त वाणी, जो आने वाला कल संडे, उसमें माताओं से मुलाकात है, उसमें उसी का हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। उसमें लगभग 9 पॉइंट्स है माताओं के लिए, कल जो बाबा ने कहे हैं। आज हम इसलिए इस टॉपिक को ले रहे हैं ताकि कल जब आप मुरली सुनेंगे तो और पक्का हो जाएगा और रिवाइज हो जाएगा भगवान माताओं से क्या क्या कहता है। समझो कि वो मैं माता हूं जिससे वो सामने बैठकर ये कह रहा है। पहला, सहज रास्ता। माताओं के लिए बाबा ने कहा माताओं के लिए यह ज्ञान का मार्ग, यह योग का मार्ग सहज रास्ता है, क्योंकि तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं, माताओं को कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, केवल एक शब्द याद रखो मेरा बाबा, बस। मुरली याद नहीं रहती चलेगा, छूट है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है बहुत अच्छा, क्योंकि बाप आए हैं तुमने अब तक जो पढ़ा है सब भूल जाओ। 1962 में एक बहन ने बाबा को बताया बाबा एक मूवी रिलीज हुई है मैं चुप रहूंगी, हिंदी फिल्म, फिल्मी मूवी, और एक दूसरी मूवी रिलीज हुई है अनपढ़। तो दोनों मूवीज फिल्मों का नाम मुरली में आया था। माताओं की महिमा बाबा ने की थी, अच्छा ही है माताएं, मैं चुप रहूंगी, तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, अपनी शक्ति से ही, योग के प्रभाव से ही सबको प्रभावित करो, और अनपढ़ अच्छा है तुम अनपढ़ो, क्योंकि जो तुमने पढ़ा है अब उसको भुलाने के लिए बाप आया है, अनलर्न व्हाट यू हैव लर्नड, तो अच्छा है जो तुमने नहीं पढ़ा, अच्छा है जो तुम अंगूठा छाप हो, अच्छा ही है, तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट माताओं के लिए कल की वाणी में जो बाबा ने कही वो है सहज मार्ग। कौन सा है सहज मार्ग? मेरा बाबा। परंतु वो मेरा बाबा ऊपर ऊपर से नहीं, मुख का सौदा नहीं है, इधर दिल का सौदा है, हृदय का सौदा। तो एक मिनट के लिए सभी योग में बैठेंगे और बहुत प्यार से एक ही बार बिना आवाज किए मन ही मन अजपा जाप और बाबा को कहेंगे मेरा बाबा तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूं। एकदम गहन मौन में आत्मिक दृष्टि में स्थित होते हुए भगवान सामने हैं और हम उसको कह रहे हैं, मैं तुम्हारी हूं, तुम मेरे हो। दूसरा, पहले माता का सिलसिला। दूसरी पॉइंट है, पहले माता का सिलसिला। अब तक जितने धर्म गुरु हुए, अब तक जितने धर्म बने, अब तक जितने शास्त्र हुए, सब धर्म को स्थापन करने वाले पुरुष रहे। अब तक जितने शास्त्र लिखे गए, सब पुरुषों ने लिखे। अब तक जो माताओं को गिराया गया और माताओं के विषय में कहा, द्वारम किमेकम नरकस्य नारी, वो सभी पुरुष थे। सबने गिराया, पैरों की जूती बताया। किसी किसी धर्म में कहते हैं स्त्री को आत्मा होती नहीं है। किसी किसी धर्म में है स्त्री के दांत पुरुष के 32, स्त्री के 2 कम। किसी ने खोल के देखने का प्रयत्न भी नहीं किया। जैन धर्म में और किस किसी धर्म में कहा है स्त्री को मोक्ष का अधिकार ही नहीं है, कैवल्य का। एक तीर्थंकर है उनमें, मल्लीनाथ, 24 तीर्थंकरों में से। उसके विषय में बहुत सारी चीजें, कोई कहते वो स्त्री थी, कोई कहते वो पुरुष, मल्लीबाई, कोई कहते मल्लीनाथ, क्योंकि पुरुष स्त्रियों को अधिकार ही नहीं है कैवल्य का। धर्म केवल पुरुषों के लिए है। ये सारी धारणाएं द्वापर से अब तक, जब महात्मा बुद्ध के धर्म में पहली बार स्त्री आ गई को प्रवेश दिया गया, तो उन्होंने कहा था मेरा धर्म 5000 वर्ष तक चलने वाला था, पर अब स्त्रियों के आने की वजह से केवल 500 वर्ष चलेगा। ये भविष्यवाणी की थी और हुई सत्य। धर्म बाहर से, भारत से बाहर चला गया बौद्ध धर्म। और भगवान देखो, वो लोग कहते हैं कि 2-3 माता एक साथ इकट्ठी रह ही नहीं सकती। बाबा कहते हैं माता ही रह सकती है, कल की वाणी में है, और कोई नहीं रह सकता। तो पहले माता का सिलसिला, मदर्स फर्स्ट की प्रथा, ट्रेडिशन, सिलसिला भगवान ने आकर चालू किया है। यदि वो इतना सम्मान दे रहा है तो मुझे क्या करना चाहिए, ये भी सोचना है। तीसरा, एक चंदन का वृक्ष। एक चंदन का वृक्ष, सभी कहां कहां से आए हैं, अलग अलग जगह से आए हैं, सभी अलग अलग शाखाओं से एक वृक्ष बन गया है। यूनिटी, भगवान कह रहा है कि तुम एक चंदन का वृक्ष हो। यदि हम में मतभेद है, हम में द्वंद्व है, हम में ईर्ष्या द्वेष है, और हम में यदि लड़ाई और झगड़ा चालू है, हम अगर किसी को देखते हैं तो इधर से चले जाते हैं, उसका चेहरा नहीं देखना चाहते। यदि इस ब्राह्मण परिवार में एक माता का दूसरे माता के प्रति घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष है, और भगवान कह रहा है एक चंदन का वृक्ष है, तो क्या कहेंगे? क्या उसके प्यार का ये रिटर्न है? हम कहां नरक में फंसे थे, विकारों की चक्की में पिस रहे थे, उसी दम तेरा वो आना न भूल पाएंगे। तेरा एहसान हो बाबा, कभी ना भूल पाएंगे। उसने आकर हमको बचाया, दो पाटन के बीच साबुत बचा न कोए। कबीर लिखता है कि हे सदगुरु, जब उसने देखा एक स्त्री चक्की पीस रही है, उसको लगता है संसार के लोग भी ऐसे ही दो पाटों के बीच में पिस रहे, दुखी हो जाता है। गुरु के पास जाता है, कहता है देखो संसार के सारे लोग इस तरह पिस रहे, मैं क्या करूं? गुरु कहता है नहीं, कुछ कुछ दाने हैं गेहूं के जो वो बीच का, क्या कहते हैं उसको, खंबा या जो लकड़ी होती है बीच की, जो उसको चिपक जाते हैं वो पिसते नहीं है, वो बच जाते हैं। वो बीच वाला जो है वो है सदगुरु, उसको पकड़ लेना है, नहीं तो दो पाटन के बीच में हम भी पिस जाएंगे। काट काट की लाठी। चौथा, खुशी। बाबा माताओं से कह रहे हैं तुम्हें तो निरंतर खुशी के गीत गाना चाहिए, वाह रे मैं, संसार की स्त्रियां क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, इसी समय ले लो। अब हम यहां बैठकर तपस्या में बैठे हैं, ज्ञान की बातें सुन रहे, संसार की स्त्रियां क्या कर रही है इस समय? श्रेष्ठ चिंतन कर रही है, क्या कर रही है? व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन, अपने भाग्य के लिए स्वयं को अपनी पीठ थपथपाना है। वाह रे, मैं ऐसे करो अभी सभी बार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मौजों के दिन मिलन की ये रातें, गीत पता है ना, पता है गीत? हम गाएंगे, आप हमारे सामने हो, साथ साथ गाओ, ठीक है? मौजों के दिन मिलन की ये रातें, बीते कभी ना ये थम जाए हरदम, गर आज हमारा बस जो चले तो हम रोक लेंगे, दिन ये सुहाने तुम हो हमारे, हम हैं तुम्हारे, बाबा ये कितने प्यारे नजारे, तेरे प्यार के आगे हर चीज फीका, वो ताज फीका, वो तख्त फीका। आगे बदले में तेरे कुछ और ना लू, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे, बाबा ये कितने प्यारे नजार। फिफ्थ पॉइंट, माता अर्थात विश्व कल्याणकारी, एक घर की कल्याणकारी नहीं। बाबा ने उदाहरण दिया, वो जो सोशल वर्कर्स होती है, वो माताएं जो होती है, वो अपना समय एडजस्ट करके सारे विश्व का कल्याण करती है। उनके भी पति होते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उसके बावजूद भी एडजस्ट तो करती है वो भी। तुम भी किसी एक घर का कल्याण करने वाली नहीं हो। स्वामी विवेकानंद ने एक जगह कहा है, माय इंटरेस्ट आर नॉट इंडियन बट इंटरनेशनल, आई हैव नॉट कम फॉर वन पर्सन, आई हैव नॉट कम फॉर वन होम वन फैमिली, आई हैव नॉट कम फॉर वन सोसाइटी, आई हैव नॉट कम फॉर वन स्टेट, आई हैव नॉट कम फॉर वन कंट्री, बट आई हैव कम फॉर द एंटायर वर्ल्ड। मैं एक व्यक्ति के लिए नहीं आया हूं, मैं एक घर के लिए नहीं आया हूं, मैं एक समाज के लिए नहीं आया हूं, मैं एक राज्य के लिए नहीं आया हूं, मैं भारत के लिए नहीं आया हूं, मैं सकल जगत के लिए आया हूं। माय इंटरेस्ट्स आर इंटरनेशनल नॉट इंडियन। माता अर्थात विश्व कल्याणकारी, अपनी हदों से स्वयं को बाहर निकालो। छठवां पॉइंट, माता अर्थात बेहद की दृष्टि वाली, हदों की दृष्टि में फंसने वाली नहीं, हदों में फंसने वाली नहीं। हदों में 63 जन्म फंसे, हदों में 63 जन्म रहे, 63 जन्म देहभान का विष तुमने पिया है, अब अमृत पियो। पीबत राम रस, विष पी पी के जहरीले हो गए। अगला पॉइंट, ये सारी पॉइंट्स हम आपको बता रहे हैं, कल जब मुरली चलेगी तो अपने मन के मन में फिर से रिवाइज करना, फिर से पढ़ना। माता अर्थात एक माता एक एक सेवा केंद्र संभालने वाली, ये नहीं कहो कि मेरे पास फुर्सत नहीं है, बाबा ने इतना बड़ा काम दे दिया है माताओं को। एक माता अर्थात एक सेवा केंद्र संभाले, इतनी पावर इतनी शक्ति हो, ये नहीं कह सकता है कोई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये मैं वो मैं इधर मैं उधर, सेवा मिलते ही बहाने चालू। इतना स्वयं को योग्य बनाना है कि उसके यज्ञ को हम चलाए, वो हमको जिम्मेवारी दे और हम उसे सहर्ष स्वीकार करें बिना बहानों के। नेक्स्ट पॉइंट, माता अर्थात बाप के पालना का रिटर्न देने वाली। अब तक इतनी पालना ली है जब से बाबा के बने, अब तक क्या पालना ही लेते रहेंगे? रिटर्न कब देंगे? रिटर्न अर्थात जो हमने पाया अब वो सब पा जाए, जो जो खुशी हमको मिली है वो हमें सबको देनी है। ये इतने काम दिए हैं कल की मुरली में, अपने को जगत माता बनाना है, मां से ममत्व, मातृत्व की ओर, ममत्व में फंसना नहीं है, और अपने मोह को प्रेम की संज्ञा देने की भूल भी नहीं करनी है। प्रेम होगा तो सबसे, मोह होगा एक से, इसका कल्याण हो जाए, ये ज्ञान में आ जाए, वो ज्ञान में आ जाए। माता अर्थात मांगने वाली नहीं, माता अर्थात दानी, देने वाली। तो भगवान अगर मां को सलाम कर रहा है तो माताओं को भी स्वयं को इतना योग्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी फिर से योग में बैठेंगे, फिर आपकी ब्रह्मा भोजन होगा। अभी हम एक प्रयोग करेंगे योग का। डायरी पेंसिल सब नीचे बंद। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास सबको करना है, जो आज से चालू करेंगे और आज से करते ही रहेंगे। हर दिन अमृत वेला यह अभ्यास करना है। माता है बाबा से कहती है, बाबा हमारा पति हमको बहुत मारता है। बाबा कहते हैं, तुमने भी मारा होगा। बाबा से माता है कहती है, बाबा मेरा बेटा बहुत सताता है। बाबा कहते हैं, तुमने भी सताया होगा। घर वाले सुनते नहीं, परिवार सहयोगी नहीं है, सब विरोध करते हैं, तुमने भी किया होगा। अभी एक प्रयोग करना है जिसमें दो चीजें करनी है। हम अपनी आंखों के सामने उन सभी आत्माओं को इमर्ज करेंगे जिनको हमने बहुत सताया है, बहुत दुख दिया है, अपशब्द बोले हैं, षड्यंत्र किया है, इंसल्ट की है, ग्लानी की है, मारा है, पीटा है, मन से या हाथ से। अभी अज्ञान काल में या द्वापर से किसी समय उन सभी आत्माओं को देखना, और क्या करेंगे उनको, और वो कहेंगे हम माफी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने भी ठान ली हम माफी नहीं करेंगे, अब क्या करोगे? बाबा से क्या, बाबा को कहेंगे इनको बोलो माफ कर दे, क्या करेंगे? नहीं, हम माफी मांग रहे हैं, पर वो कहते हम नहीं करेंगे, अब बोलो क्या करना है? क्या करेंगे? दुआएं देंगे। वो कह रहे हम फिर भी माफ नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? हम दुआएं देते रहेंगे, माफी मांगते रहना। एक ना एक दिन तो होगी, धीरज भी तो चाहिए, क्योंकि तुमने दुख तो कम थोड़ी दिया है। तुम जमींदार थे, वो बेचारा किसान था, झूठ से उसकी जमीन हड़प ली थी उस जन्म में, 70वें जन्म में। बेचारा परिवार बेघर हो गया था, बच्चे मर गए थे भूख से, अब वही पति बनकर आया है, ऐसे ही छोड़ देगा क्या? कुछ तो करेगा। उन सभी आत्माओं को देखना है जिनको हमने बहुत तड़पा तड़पा के क्या किया था, सताया था, मेंटल टॉर्चर, और बड़े खुश हुए थे अंदर ही अंदर, आहा आज थोड़ा ठीक लगा, अब उनसे माफी मांगनी है, अब मैं क्षमा प्रार्थी हूं, अब सच्चे दिल से। क्योंकि जब तक उनकी बद्दुआएं चल रही है, ये पुरुषार्थ आगे नहीं बढ़ सकता, वहीं अटके रहेंगे हम, फंसे रहेंगे, ना अमृत वेला ठीक हो रहा है, ना कुछ ठोकर ठीक हो रहा है, क्योंकि साथ साथ बद्दुआएं चल रही है आत्माओं के, काली सी छाया पीछा कर रही है। एक दूसरा अभ्यास, उन आत्माओं को देखो जिन्होंने मुझे बहुत सताया, अपमान किया, षड्यंत्र किए, टॉर्चर किया, अभी भी कर ही रहे, करना बंद नहीं हुआ है, चालू है करना, अभी भी कुछ कुछ कर ही रहे, कमेंट्स आते ही रहते हैं, सामने से अच्छे से बोलते पीछे से छुरा घोंपते हैं, उन आत्माओं का क्या करेंगे अब? क्यों क्यों माफ करेंगे? क्या हम वो कुछ भी करते रहे माफी करते रहे? हम माफ क्यों करें? कौन उत्तर देगा? हमारा अमृत वेला अच्छा हो जाएगा, और हमें माफ क्यों करना है? उनको सुख देना है और हल्का होने के लिए माफ करना पड़ेगा, और माफ करेंगे तो माफी मिलेगी, और हाँ कार्मिक अकाउंट सेटल होगा, और माफ क्यों करना है? हाँ क्या मातृत्व की तरफ चलना है इसलिए माफ कर देना है। हाँ चलो बहुत वेरी गुड। और हाँ खुद को बदलना है, दूसरों को हम नहीं बदल सकते। और हाँ विश्व कल्याणकारी है, इसके लिए माफ कर दो, वो पाप करते रहेंगे, दुख देते रहेंगे, हम माफ करते रहेंगे। और बताओ हाँ वो अज्ञान का वश कर रहे हैं, बेचारे परवश है, नादान है, अनजान है, माया के वश है, ग्रहचारी बैठी है, इसलिए छोड़ दो। और माँ ने मास्टर भगवान बनाया इसलिए भगवान बनकर उनको माफ कर दो। और हाँ उनको बाबा का प्यार फील करने के लिए। और हाँ हम भी निगेटिव होते जाते, निगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर जमा होती है, वो हमें वापस रिवर्ट बैक हमारे पास ही आ रही है। अपने लिए हमको उनको माफ करना है। और हम हल्के हो जाएंगे, बोल दिया और उनको सका, और वो हमारे रियल फ्रेंड्स है, और नहीं माफ क्यों करना है? कोई नया उत्तर है क्या जितने बताए? हम आत्मा भाई भाई है, माफ कर दो। और बाबा से प्यार कर, क्या बाबा से मिलाना है? और क्या बोला? बाबा के बच्चे समझ के माफ कर दो। और हमें बाप समान बनना है, हम पूर्वज आत्माएं हैं, हम पूज्य आत्माएं हैं, हम बड़े हैं, हम पहले आए वो तो अभी अभी आए, इसलिए माफ कर देंगे। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, तुम्हें माफ करना है क्योंकि, लिख लो, ये बाप की आज्ञा है। फायदा तुम्हारा हो या उसका हो, सब एक तरफ, मैं कह रहा हूं तुम्हें माफ करना है इसलिए माफ कर दो। देर इज नॉट टू रीजन वाई, देर इज बट टू डू एंड डाई। आर्मी का नियम है, सवाल मत पूछो क्या, क्यों, कैसे, कब, कहा, मैं कह रहा हूं ना, बस फाइनल स्टेटमेंट है मेरा। डायरी बंद, चलो। मैं इस संसार की पूर्वज आत्मा हूं, रहम के सागर, परमात्मा की संतान, कृपा सिंधु, दया सिंधु की संतान, मास्टर रहम का सागर हूं। पूज्य हूं, कुटी तख्त पर विराजमान मैं आत्मा, अपनी महंता में स्थित हूं, देह को यहीं छोड़, सूक्ष्म तन धारण कर, अव्यक्त वतन में बाप दादा के सम्मुख हूं। बाबा मुझे देख रहे हैं, फिर से याद दिला रहे हैं, बच्चे तुम इस सृष्टि की महान आत्मा, संसार की सभी आत्माओं के पालक हो, जाओ जाकर विश्व की आत्माओं का कल्याण करो, जाओ विश्व की आत्माओं की श्रेष्ठ संकल्पों से परमात्मा प्रेम से पालना करो, तुम बड़े हो, सबको अपना बना दो, जाओ मैं आत्मा आप देख रहा हूं, मेरे सम्मुख वो सभी आत्माएं इमर्ज हो गई है जिन्होंने मुझे बहुत सताया था, दुख दिया था, पीड़ा दी थी, षड्यंत्र किए थे, दुख में सहायता नहीं दी थी। आज मैं पूर्वज आत्मा इन सभी को देख रही हूं, इन्होंने जो कुछ भी दिया वो मेरे ही कर्म थे और उसका परिणाम, मैं इन सबको निर्दोष देखती हूं और आज इन सबको क्षमा दान करती हूं। क्षमा ही नहीं, मुझे इनका धन्यवाद भी करना है, आप आए और सारे हिसाब चुक्त हो गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी। अब मेरे मन में आपके लिए केवल प्रेम है, और मैं देख रही हूं अब ये सभी आत्माएं मेरे मित्र बन गए, दूसरी तरफ मैं देख रही हूं वो सभी आत्माएं क्रोध में जिनको मैंने दुख दिया था, जिनको मैंने सताया था, मेरे वजह से उनका जीवन नरक बन गया था। हे आत्माओं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे माफ कर दो, मैं अनजान था, ज्ञान में था, परवश था, मेरी इन बातों को सुनकर उनका क्रोध शांत हो गया है और महसूस हो रहा है कि इन सब ने अब मुझे माफ कर दिया है, अनुभव हो रहा है उनके दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। कैसा हल्कापन आज आ गया है, सारे बोझ उतर गए, डबल लाइट फरिश्ता। इसी स्मृति से मैं फरिश्ता धीरे धीरे वापस अपने स्थूल देह में प्रवेश करता हूं। ओम शांति। इस अभ्यास को सभी आज से या कल से अगले 3 मास के लिए रोज एक बार अमृत वेले करना है। कितना दिन? 3 मास। अचानक जो भारीपन है एक दिन उठ जाएगा, अचानक जिसने हमें माफ नहीं किया वो माफ कर देगा बिना उससे हम कुछ कहे, केवल अमृत वेला मनसा। और एक पॉइंट था माताओं के, इसमें टोटल 9-8 बताए हमने, एक और था मनसा सेवा, 7वें नंबर का ये पॉइंट है, और फिर 8 और 9। केवल मुख की सेवा नहीं, मन की भी सेवा करनी है। भाव क्या है, किसको समझाते हो उससे प्रभाव पड़ेगा। तो ये मनसा अभ्यास भी आज और कल से आरंभ करना है अगले 3 मास के लिए। अच्छा, ओम शांति।